So today I want to speak on new covenant, which is life in the spirit.
आज मैं नई वाचा के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आत्मा के अंदर जो हमारा जीवन है उसके बारे में.
So I was wondering whether in the recent days I was wondering whether what value Jesus had given to the Holy Spirit, whether I am giving it in my personal life, and how the early church had valued whether we are giving it as a church.
और मैं इस बारे में सोच रहा था कि कितना अधिक यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को मूल्य दिया है, कितना अधिक पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी उसने पवित्र आत्मा का मूल्य दिया है, और क्या एक कलीसिया के नाते हम पवित्र आत्मा को उतना मूल्य देते हैं या नहीं, उसके बारे में मैं सोच रहा था.
So I was also checking that how much value, how much dependent I am on the Holy Spirit.
और मैं सोच रहा था कि कितना अधिक क्या मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर हूँ, उसके बारे में सोच रहा था.
Because when we read in the Gospels,
जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं,
In all four Gospels, it starts with a promise that I will baptize you with Holy Spirit.
और जब चारों सुसमाचार के शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं कि उस प्रतिज्ञा के साथ शुरुआत होती है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा.
So it was something which is very essential and very basic and very very needed for us.
और ये बहुत ही मूलभूत जो है, बहुत ही प्राथमिक चीज है जो हमारी जरूरत है, वो है ये.
In fact, when John introduces Jesus,
और यहां तक कि जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह की ओर उनको दिखाता है,
he says he is the one who is the baptizer of the Holy Spirit.
और वो कहता है कि वो ये है कि वो जो लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा.
So this is one thing which God has promised us, and we have to claim that promise and we have to receive it by faith.
और ये एक चीज है जो परमेश्वर ने हमें देने का वादा किया है, और हमें विश्वास से उस चीज को लेना है.
Not only in the four Gospels, we also see when Jesus was about to go taken to the cross.
और केवल सुसमाचार के आरंभ में नहीं, लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला उस समय,
बिफोर दैट ही गेव ए वेरी बिग मैसेज ऑन इन जॉन 14:15-16.
और यूहन्ना 14:15-16 उस अध्याय के अंदर यीशु ने एक बड़ा संदेश वहां पर दिया.
इन दोस प्लेसेस ऑल्सो ही अगेन एंड अगेन एम्फेसाइज दैट देयर विल बी अनदर हेल्पर हु विल बी गिवन टू यू, अनदर कम्फर्टर इंस्टेड ऑफ मी.
और वहां पर और एक बार 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 यीशु दोहराता है कि और एक बार सहायक तुम्हें दिया जाएगा, सांत्वना देने वाला दिया जाएगा, पवित्र आत्मा के बारे में दोहराता है.
आफ्टर दैट, आफ्टर हिज डेथ एंड रिजरेक्शन, आफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड टू डिसिपल्स, ही डिड नॉट, ही टोल्ड देम मेनी थिंग्स, बट एट द एंड ही सेड you have to wait here until you receive power from above.
और यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उस शिष्य को उसके जब स्वर्गारोहण के पहले वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बाट जोना है जब तक कि आप ऊपर से सामर्थ को प्राप्त न करो.
So Jesus knew that all the messages they have heard all these years and all those things which they have heard from Jesus himself, all the word of God will not take root in their lives, will not bring fruit unless they are baptized with the Holy Spirit.
और यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उन लोगों ने, शिष्यों ने जितने ही संदेश यीशु मसीह के द्वारा भी जितने भी सुने हो, तब तक जड़ नहीं पकड़ेगा जब तक कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं पाते हैं.
That's why he told them even while going also he said you have to wait here, and finally the disciples understood it.
और इसलिए वो जाते समय भी यही कहता है और शिष्यों ने भी इस बात को समझ लिया.
And we just read from John 14.
यूहन्ना 14.
John 14 verse 16.
उसका 16 वचन.
We read from 13, 14, 15 and 16.
और 13 से 17 तक पढ़ेंगे.
He says, whatever you ask in my name, that I will do, so that my father may be glorified in the son. If you ask me anything in my name, I will do it. If you love me, you will keep my commandments. I will ask the father and he will give you another helper, that he may be with you forever.
और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो. यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे.
So when Jesus was saying that whatever you ask in my name, he was talking about the Holy Spirit, which we need to ask him and receive from him.
और यीशु मसीह यहाँ पे जो कह रहा है कि कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, वो पवित्र आत्मा के मांगने के बारे में कह रहा है कि जब हम उससे मांगेंगे वो हमें देगा.
And he also said that he will be with you forever.
और वहां कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा.
And in verse 17 he says he'll be in you.
और 17 वचन में कहता है कि वो तुम्हारे भीतर होगा.
So Jesus was with the disciples, but when Holy Spirit comes, He'll be in us.
और जब यीशु मसीह शिष्यों के साथ था तो उनके साथ था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारे भीतर आता है.
So it gives us power inside us.
तो वो पवित्र आत्मा आकर हमारे भीतर हमको आकर सामर्थ देता है.
बिकॉज इन अवर फ्लैश देयर इज अ टेंडेंसी टू सिन.
हमारे शरीर के अंदर ये भावना हमेशा होती है कि पाप करने की भावना.
इट इज इनसाइड मी.
और वो मेरे भीतर ही है.
इट्स नॉट समथिंग विच इज टेम्पटिंग जस्ट फ्रॉम आउटसाइड. देयर इज अ टेम्पटेशन इनसाइड मी.
और ये केवल उतना ही नहीं कि बाहर से मुझे कोई परीक्षण आ रहे, लेकिन मेरे भीतर भी वो है.
सो अनलेस आई एम हैविंग ए पावर इनसाइड माई हार्ट इनसाइड मी, आई कैनॉट ओवरकम दैट.
और जब तक मेरे हृदय मेरे भीतर के अंदर वो सामर्थ नहीं, तब तक मैं उस पर जयवंत जय नहीं प्राप्त.
Maybe I can with my self efforts I can overcome it one day, two days.
और मेरे हो सकता है अपने खुद के प्रयत्नों के द्वारा एक या दो दिन तक मैं उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूँ.
After that, even in my heart there will be no life of God.
लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर का कोई जीवन नहीं बचेगा.
सो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट नीड एंड आवर वीकनेस.
और ये बहुत ही जरूरी, इस चीज को समझना, हमारी जरूरत को और हमारी कमजोरी को भी समझना.
In John chapter 16,
यूहन्ना 16 अध्याय,
verse 15,
15 वचन,
he says, he takes of mine and will disclose it to you.
और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा.
So he will take of what is in Jesus and he will show me what is in Jesus.
और पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का, उसमें से लेकर मुझे दिखाएगा यीशु मसीह के बारे में.
So he will show me things which I cannot see.
पवित्र आत्मा मुझे वो बातों को दिखाएगा जो मैं अपने आप से नहीं देख सकता.
So that is why we need to ask God to give us that spirit of God when we read the word so that we understand things we cannot see.
और इसलिए हम जब वचन को पढ़ते तो परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु जो बातों को हम नहीं देख सकते वो देखने के लिए हमारी मदद करे.
That's when second Corinthians,
दूसरा कुरिन्थियों,
chapter 2,
दूसरा अध्याय,
in verse 9, it says things which eye has not seen. Sorry, it's first Corinthians chapter 2 verse 9.
पहला कुरिन्थियों 2:9.
It says things which eye has not seen and ear has not heard. Which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him.
परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है.
When we read this verse, normally we think about either we think about all the blessings which God will give us on this earth.
और इस वचन को जब हम पढ़ते तो हम बाहरी जो परमेश्वर इस दुनिया की जो आशीष है उसके बारे में सोचते जो परमेश्वर हमें देगा.
और वी थिंक अबाउट हेवन, व्हेन वी गो टू हेवन व्हाट ब्लेसिंग्स गॉड इज गोइंग टू गिव अस.
और या हम सोचते हैं कि जो हम स्वर्ग जाकर स्वर्ग में जो आशीष मिलने वाले उसके बारे में सोचते हैं.
बट इन वर्स 10 इट सेज फॉर टू अस गॉड हैज रिवील्ड देम थ्रू द स्पिरिट.
और 10 वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है.
सो इट इज रेवलेशन ऑफ गॉड in this word that what are the riches of God, God has given us freely, that is what Holy Spirit reveals us.
और पवित्र आत्मा हम पर क्या प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की जो गुड़ रहस्य जो वचन के अंदर छिपे हुए वो हम पर प्रकट करता है.
So this verse in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 which says eye has not seen, it is taken from Isaiah.
और ये जो लिखा है दूसरा 9 वचन में लिखा है जो आंख ने नहीं देखा वो यशया से लिया गया है.
In Isaiah 64, verse 4.
Yeshaya 64, uska 4 vachan.
It says, who in the last part of the verse says, who acts in behalf of those who wait, of the ones who wait for him.
और जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करता है, उसके अंतिम भाग में लिखा है.
So, the one which here it says, love God, the same way in Isaiah it's written, those who wait for him.
और जैसे यहाँ पे लिखा है परमेश्वर से प्रेम करना, लेकिन यशाया के अंदर उसी प्रकार परमेश्वर के लिए बाट जोने के बारे में लिखा है.
सो इफ आई हैव अ हैबिट ऑफ नॉट जस्ट वेटिंग फॉर गॉड एंड आस्किंग एंड रिसीविंग एंड प्रेइंग, दैट दोस आर द पीपल गॉड हैज प्रॉमिस्ड दिस ब्लेसिंग.
और उनके लिए परमेश्वर ने आशीष को रखा जो परमेश्वर की बाट जोते, उससे मांगते, उससे प्रार्थना करते, उन लोगों के लिए.
नॉट दोस हू डोंट वैल्यू दैट.
और उन लोगों के लिए नहीं जो उनका मूल्य नहीं कर पाते.
दोस हू डोंट अंडरस्टैंड दैट वैल्यू, दे विल नॉट वेट ऑन द लॉर्ड.
और जो उसका मूल्य नहीं समझते वो परमेश्वर की बाट नहीं देख पाते.
इन एफिशियंस,
इफिसियो
चैप्टर 1,
इफिसियो अध्याय 1,
वर्स 18 इट सेज, आई प्रे दैट द आईज ऑफ योर हार्ट मे बी अनलाइटन सो दैट यू विल नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग, व्हाट आर द रिचेस of the glory of his inheritance in the saints and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe.
और इफिसियों 1:18-19 और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते कितनी महान उस शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार.
So it is something talking about my heart. Eyes of my heart to be opened.
और यहाँ लिखा है कि हमारे हृदय की आंखें जो है उसको खुलना जरूरी है.
That I may understand what is the power God has kept for me.
और ये ताकि मैं समझ सकूं कि जो सामर्थ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है.
It is something which I need my eyes to be opened to.
और ये ऐसी चीज है जिसको देखने के लिए मेरे मन की मेरे हृदय की आंखें खुलनी चाहिए.
In verse chapter 3,
इफिसियों 3 अध्याय
in verse 16,
17.
It says he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man so that Christ may dwell in your heart through faith.
और कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर.
So it is talking about my inner man being strengthened.
और यहाँ पे लिखा हमारे भीतरी मनुष्यत्व नया होना या सामर्थ बलवंत होना.
And when I have strength in the inner man, then I can show the nature of Christ. The Christ can be revealed in my life.
और जब मेरे भीतरी मनुष्य में वो बल वो सामर्थ होगा तब मेरे स्वभाव से मैं यीशु के स्वभाव को दिखा पाऊंगा.
That Christ will be in my heart, ruling in my heart.
और यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर मेरे ऊपर राज्य करेगा.
In Romans chapter 8,
रोमियो 8 अध्याय.
Verse 2 and 3. It says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own son in the likeness of sinful flesh.
और क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके उसने उसको परमेश्वर ने किया.
So there is something in my flesh which does not allow me to overcome sin.
और मेरे शरीर में ऐसी कोई चीज है जो मुझे पाप पर जयवंत होने के लिए मुझे मदद नहीं या उस पर नहीं करने देती.
But we should believe that God has given us God has promised us a power which is able to overcome that sin.
लेकिन हमें इस चीज पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें ये वायदा दिया है कि वो सामर्थ हमको देगा उस पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए.
I should not believe what I have seen in my life so far.
और जब मुझे मेरे जीवन में अब तक जो मेरा अनुभव रहा है जो चीजें उस पर देखकर मुझे विश्वास नहीं करना है.
Word of God says that there is a power which God has promised us so that we can overcome sin.
और प्रभु का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके वचन में कहा है कि वो सामर्थ हमारे लिखा गया ताकि हम पाप पर जय पा सके.
That it says here that the law of sin and death, law of the spirit of life in that is the life of Christ in us.
और वहां पे लिखा है कि जो शरीर के कारण दुर्बल मुझ पर पाप की और आत्मा की जो व्यवस्था है मतलब परमेश्वर का जो जीवन मुझ में है मसीह का जीवन.
So it is the life of Christ in me.
और मसीह का जीवन मुझ में है.
So that is what it is not some laws which will help me to overcome sin.
और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा मैं पाप पर जय पाऊंगा.
It is the life of Christ inside my heart.
लेकिन मेरे हृदय के भीतर यीशु मसीह का जीवन उसके द्वारा.
So that life of Christ is through the Holy Spirit I receive it.
और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जीवन मुझ में मैं करता हूँ.
It is not through making so many resolutions.
और ये बहुत सारे निर्णय करने के द्वारा नहीं है.
It is just depending on God for his life.
और वो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होकर उसके जीवन के लिए.
Jesus said that you have to abide in me.
और यीशु ने कहा कि तुम्हें मुझ में बने रहना है.
So there is only one thing which gives me life is if I am connected to Jesus Christ.
और एक ही चीज जो मुझको जीवन देता है वो है कि जब मैं यीशु मसीह से जुड़ा रहता हूं.
That is, and I am helplessly like a branch abides in the vine. I am helplessly dependent on it.
और जैसे बहुत ही असहाय रूप से जैसे एक पेड़ के अंदर एक डाली बनी रहती उस तरह से अगर मैं यीशु मसीह में बना रहूं.
That's why in time of need, in time of temptation, I just say that Lord, I cannot do it. I want your grace here.
और जब हमारी जरूरत का समय होता है परीक्षण का समय होता है तब हम कह सकते हैं कि प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत यहाँ पर है.
I need the life of Christ here.
और मुझे यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन की जरूरत है.
I want you to give me power inside my heart.
प्रभु मेरे हृदय के अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रभु तू मुझे सामर्थ दे.
I am ready to deny my will, but I need your power, Lord.
प्रभु मैं मेरी इच्छा का इनकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको करने के लिए मुझे मेरे हृदय में तू ताकत दे.
In 1 Corinthians,
पहला कुरिन्थियों,
sorry, in 2 Corinthians,
दूसरा कुरिन्थियों,
chapter 4,
चार अध्याय,
in verse 6 and 7,
छे और सात वचन.
For God has said, light shall shine out of darkness, is the one who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. For we have this treasure in earthen vessels, so that the surpassing greatness of the power will be of God and not of ourselves.
इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे.
So here it talks about the glory of God in the face of Christ.
और यहाँ पे परमेश्वर की महिमा जो यीशु मसीह के चेहरे से चमकी उसके बारे में लिखता है.
So that is the light of the gospel.
और ये जो सुसमाचार की ज्योति है.
That will shine in our hearts.
और वो हमारे हृदयों में चमकती है.
And then it says this is the treasure which God has given in our hearts.
और ये लिखा है कि ये जो असीम धन हमारे हृदयों के अंदर दिया गया है.
So have I seen that life of Jesus and the life of Christ? And the glory of God in the face of Christ as a treasure.
और क्या मैंने एक परमेश्वर की जो महिमा, यीशु मसीह की महिमा जो है, या उस धन जो धन के रूप में मैंने क्या देखा है?
Or have I taken it lightly? Have I taken it as a common thing?
और क्या मैंने उसको बहुत ही हल्के इस रूप में, सामान्य रूप में लिया है?
Have my eyes been open to see that Lord, the life of Christ or a life I have to live as a Christian is such a marvelous thing.
और क्या मैंने इस चीज को देख पाया, मेरी आंखें खुली है कि प्रभु जी इस प्रकार का जीवन देना कितनी एक अद्भुत बात हो सकती है.
So unless I am gripped by that, unless I know that there is a treasure which God has kept for me, I will not seek for it.
और जब तक कि मैं उस चीज को, उस सत्य को, एक कि परमेश्वर ने मेरे लिए धन को, असीम धन को रखा, उसको जकड़ न लूं, तब तक मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा.
It's like a millions of rupees which my father has left for me.
ऐसे हो सकता है, जैसे मान के देखिए, बहुत सारे करोड़ों रुपए परमेश्वर मेरे पिता ने मेरे लिए रखे हैं.
And I don't know about it.
और मैं उसके बारे में नहीं जानता.
Unless I am not aware of it, I will not go and take that money.
और जब तक मुझे उसकी जानकारी नहीं, तब तक मैं उस पे जाकर उस पैसों को नहीं ले पाऊंगा.
But when I become aware that there is this great wealth which my father has kept for me.
और जब मुझे ये जानकारी मिलेगी, मुझे पता चलेगा कि मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ी धन, बड़ा धन मेरे लिए रखा है.
Then I will seek after that treasure.
और तब मैं उस धन, उस संपत्ति के पीछे मैं जाना चाहूंगा.
That's why Jesus said that you should not lay up for yourself treasures on the earth.
इसलिए यीशु ने कहा कि संसार की, उस पृथ्वी के ऊपर आप धन को संचय न करें.
But lay up for yourself treasures in heaven.
लेकिन स्वर्ग के अंदर अपने धन को आप इकट्ठा करें.
Because where your treasure is, there your heart will be also.
क्योंकि लिखा है कि जहां तुम्हारा धन होगा, जहां संपत्ति होगी, वहीं पर तुम्हारा मन लगा रहेगा.
So if I kept the treasure of my life in this earth,
अगर मेरे जीवन के अंदर धन, संसार का ही धन मैंने मेरे हृदय में रखा है,
that means my heart, the central place in my heart and in my thoughts and my desires is everything of this earth.
और मेरे हृदय के अंदर, मेरे उसके केंद्र स्थान के अंदर, मेरी इच्छाओं के अंदर, हर चीजों के अंदर दुनिया की चीजें ही है.
Then I cannot pursue that life of God which God has promised.
अगर ऐसा है तो परमेश्वर ने जो वायदा दिया है, वो जीवन परमेश्वर का मैं नहीं प्राप्त कर सकता.
Because Jesus said you cannot serve two masters.
और यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते.
You either will seek after one thing or you will seek after other thing.
आप एक के पीछे चल सकते हैं या फिर दूसरे के पीछे.
That is why Jesus says seek ye first the kingdom of God.
यीशु ने इसलिए कहा कि पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो.
That means I have to seek the life in the Holy Spirit.
इसलिए मुझे उस जीवन को पवित्र आत्मा में जो है उसको खोजना है.
That's why it says in Romans that the life of the Spirit is the kingdom of God is not for eating and drinking but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit.
इसलिए रोमियो के अंदर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन वो धार्मिकता, वो शांति है.
So unless I have that eyes opened, I cannot see it.
जब तक मेरी आंख खुली नहीं होगी तब तक मैं उसे नहीं देख
पाऊंगा. So as Paul said that I pray that the eyes of my understanding, of your understanding will be opened.
Paulus जैसे कहता है कि तुम्हारे मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो या खुल जाए.
That you may see what is the riches which God has kept for me.
इसलिए ताकि परमेश्वर ने जो बड़ी मिरास या धन तुम्हारे लिए रखा है उसे मैं देख सकूं.
I don't want to just be satisfied with what little bit I have received.
और मैं अपने पास जो जो, जो, जो थोड़ा बहुत है उससे मैं संतुष्ट नहीं होना चाहता.
Little bit progress, I should not be satisfied.
और थोड़ी बहुत जो बढ़ोतरी मैं करता हूं उससे मुझे संतुष्ट नहीं होना.
I should seek for the full life which God has promised.
लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा दिया उसका संपूर्ण जीवन मैं खोज करूंगा.
Because we see the spirit of Apostle Paul when he writes some epistles.
और जब प्रेरित पौलुस की हम आत्मा को देखते जैसे वो वहां पे लिखता है.
He says we are more than conquerors.
वो लिखता है हम जयवंत से भी बढ़कर है.
He doesn't say that somehow I conquer.
और ऐसा नहीं लिखा कि कुछ तो करके थोड़ा बहुत मैं जयवंत होता हूं.
He says, I am more than conquerors.
वो कहते हैं मैं जयवंत से बढ़कर हूं.
He also says in other place that thanks be to God who always leads us in triumph through Christ Jesus.
और एक जगह पे पौलुस लिखता है कि परमेश्वर का यीशु मसीह का धन्यवाद जो यीशु के द्वारा में निरंतर उस सदा जय के उत्सव में ले चलता है.
So he was always in the spirit of overcoming.
और इसलिए हमेशा वो जयवंत जय पाने की उस आत्मा के अंदर पौलुस था.
While he was in a difficult situation in the jail, he was not depressed.
और यहां तक कि वो कैदखाने में था वो बिल्कुल निराश नहीं था.
Because he at that time he writes to the church that rejoice in the Lord always, and again I say rejoice.
और वो बंदीगृह से कलीसिया को लिखता है कि प्रभु में आनंदित करो. और एक बार मैं कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो.
Paul did not have a different flesh from me.
और पौलुस के पास मुझसे कोई अलग शरीर नहीं था.
He had the same flesh and the same temptations like me.
और मेरे ही समान वो शरीर उसके पास था वही परीक्षण उसके भी थे.
In fact, Jesus also had the same flesh as me.
और यहाँ तक कि यीशु मसीह का भी शरीर मेरे जैसे ही था.
But he had depended on God so much.
और वो इतना अधिक पिता के ऊपर परमेश्वर के ऊपर निर्भर था.
एंड नॉट ओनली जीसस, वी सी अपोस्टल पॉल आल्सो, ही वाज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गॉड.
और यहाँ तो यीशु मसीह नहीं लेकिन प्रेरित पौलुस भी हम देखते हैं वो परमेश्वर पे इतना ज्यादा निर्भर था.
दैट्स व्हेन सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4,
इसलिए दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में
वी रीड इन वर्स 7,
सात वचन में,
दैट द ग्रेटनेस ऑफ द पावर विल बी ऑफ गॉड एंड नॉट फ्रॉम आवरसेल्व्स.
और वो लिखता है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे.
सो ही वाज सेइंग दैट ही नोस दैट द पावर व्हिच he has cannot be from my own strength.
और वो ये कहना चाह रहा है कि जो असीम सामर्थ्य जो मेरे पास है वो मैं खुद के अपने बल से नहीं है मेरे अंदर.
And how he could rejoice in situations which were so contrary.
और बहुत ही विपरीत परिस्थिति के अंदर कैसे वो आनंदित रह सका पौलुस.
He says that secret that we are afflicted in every way. In verse 8.
और आठ वचन में कहते हैं हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं.
But not crushed.
पर संकट में नहीं पड़ते.
Perplexed but not despairing.
निरुपाय तो होते पर निराश नहीं होते.
Persecuted but not forsaken.
और सताए जाते पर त्यागे नहीं जाते.
Struck down but not destroyed.
और गिराए तो जाते पर नाश नहीं होते हैं.
Always carrying about in the body the dying of Jesus.
हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं.
So that the life of Jesus also may be manifested in us.
और ताकि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो सके.
So he was always dying to his own will.
और वो हमेशा अपनी खुद की इच्छा के लिए वो मरता था.
That's why the life of Christ and the power of Christ was revealed in him.
और इसीलिए मसीह यीशु का सामर्थ्य उसके अंदर प्रकाशित हुआ.
That's why he could rejoice in situations which were impossible to rejoice.
और ऐसे यहां तक कि ऐसी हालात जहां पर बहुत ही असंभव था आनंद मनाना ऐसी परिस्थिति में भी वो आनंदित हो सका.
That's why in verse 16 he says,
16 वचन में वो कहता है,
therefore we do not lose heart.
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते.
Though our outer man is decaying,
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता
yet
है,
yet our inner man is being renewed day by day.
तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता
है. So he's talking about a transformation which is taking place.
और वो एक बदलाव के बारे में बात कर रहा है वो प्रतिदिन जिसके जो होता है.
Outside people may say that you are living such a miserable life.
और बाहरी दौर से लोग कह सकते कि तुम कैसे दयनीय जीवन जी रहे हो.
That means there is a lot of trials and tribulations.
और बहुत ही ऐसे संकट और बहुत ही ऐसे परीक्षणों से आप गुजरते हो.
I may be insulted, I may be crushed down, I may be said many things.
और हो सकता है कि मेरी बदनामी हो सकती है कि कुचला जा सकता है या कुछ भी बहुत सारी चीजें मेरे विरोध में हो सकती
है. My outer man is decaying.
मेरा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता जाता है.
So in that situation when my outer man, that means my soul life is being crushed.
और जैसे कि मेरा जो प्राण जो है वो पूरी तरह से कुचला जाता है.
Then my inner man should be renewed.
और तब मेरा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो नया हो जाता है.
For that I need the power of the Holy Spirit.
और उसी लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है.
And then for that I need to see the glory of Christ.
और इस कारण इसी के लिए मुझे यीशु मसीह की महिमा को देखना जरूरी है.
That is why Paul could say that I know that, for we know that all things work together for good.
और पॉलुस इसलिए कहता है कि मैं जानता हूँ इसी कारण हर चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती
हैं. Because he had his eyes open.
और क्योंकि उसकी आँखें खुली थी.
He is not in verse 18 it says.
18 वचन में वो कहता है.
So while we look not at the things which we see, but at the things which are not seen.
और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं.
For the things which are seen are temporal.
क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिन की है.
But things which are not seen are eternal.
परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती
है. So as have my eyes been moved from the things which are temporary to the things which are eternal.
और क्या मेरी आंखें जो दिखने वाली जो सांसारिक जो बातें उससे बढ़कर उससे हटकर क्या जो अनंत काल की बातों पर क्या लगी है.
Do I in the midst of difficulty see the God's work? Working in my heart.
और क्या उन कठिन हालातों में क्या मैं देख पाता हूँ परमेश्वर मेरे हृदय में कार्य करते हुए क्या मैं जान पाता हूँ.
Can I see the voice and I hear the voice of the Holy Spirit inside my heart.
और क्या मैं पवित्र आत्मा की आवाज मेरे हृदय के भीतर में सुन पाता हूँ.
Do I receive the power of God to which helps me to rejoice in that situation.
और क्या मैं पवित्र आत्मा से उस सामर्थ्य के प्राप्त करता हूँ जो उस परिस्थिति में मुझे आनंदित होने के लिए मदद करती है.
Paul says in another verse that In the midst of the crooked and perverse generation, God has called us to shine as light.
और जैसे पौलुस लिखता है कि टेढ़ी प्रजाति के बीच में परमेश्वर ने हमें एक प्रकाशित जीवन जीने के लिए बुलाया है.
That means we have to do all things without complaining and disputing.
इसका मतलब कोई भी हर कार्य हमें बिना कुड़कुड़ाए करना है.
So if I am always complaining, I will not be a light.
और जब मैं हमेशा अगर शिकायत करता रहूंगा तो मैं एक ज्योति नहीं बन पाऊंगा.
बट इन सिचुएशंस वेयर आई एम सपोज्ड टू कंप्लेन इफ आई कैन शो फॉरथ द लव ऑफ जीसस एंड द लाइफ ऑफ जीसस देन आई कैन बी अ लाइट.
और अगर जहां पर शिकायत करने जैसी हालात है लेकिन वहां पर अगर मैं वहां पर प्रभु के प्रेम को दिखाता हूं तब मैं उस चीज में चमक पाऊंगा.
सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट गॉड हैज नॉट कॉल्ड अस फॉर अ नेचुरल लाइफ.
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक स्वाभाविक जो जीवन प्राकृतिक जो हम जीते उसके लिए नहीं बुलाया.
God has not called us to live a decent Christian life.
और एक साधारण मसीह जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बुलाया.
If I live a decent life, I will not be a witness on this earth.
और एक साधारण अगर मसीह जीवन जीता हूँ तो मैं परमेश्वर के इस धरती पर गवाह नहीं बन पाऊंगा.
That's why Jesus said, "You shall receive power and you shall be my witnesses."
इसलिए यीशु कहता है तुम ऊपर से सामर्थ को प्राप्त करोगे और तब मेरे गवाह बनोगे.
So witness is through my life.
और जो गवाही जो है वो मेरे जीवन के द्वारा है.
And witness is for the glory of God.
और ये गवाही जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है.
So when if my life is not bringing glory to God,
और यदि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए महिमा नहीं लाता है,
then I am not living the real Christian life I'm supposed to live.
और तो मुझे जैसा जो सही मसीह जीवन जीना चाहिए वो शायद मैं नहीं जी रहा हूँ.
That's why Jesus said you have to wait on Him until you receive powers and you will be my witnesses.
और इसलिए कहता है कि जब तक कि ऊपर से वो सामर्थ न मिले तब तक बाट जोना है.
In Luke chapter 11,
लुका 11 अध्याय.
Verse 11 to 13 says, now suppose one of you fathers ask his son for fish, he will not give him a snake instead of a fish, will he? Or if he asks for egg, he will not give him a scorpion, will he? If you then being evil know how to give your good gifts to your children, how much more will your heavenly father give the Holy Spirit to those who ask him.
और तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे. सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा.
So when Jesus was saying that your loving father will give good gifts to his children.
और यहाँ पे यीशु मसीह कहता है एक प्रेमी पिता अपने बच्चों को अच्छे तोहफे देगा.
Jesus knew what is the greatest gift that we should all long for.
और यीशु मसीह जानता था कि सबसे अच्छा वरदान जो है जो भेंट जो हमें उसकी चाहत करनी चाहिए वो क्या था.
What we should ask for God all the time.
और हर समय जो परमेश्वर से हमें मांगना है वो क्या है.
It is not some comfortable life on this earth.
और आरामदायक इस संसार का जीवन उतना नहीं.
But we should ask for Holy Spirit. That's what Jesus was saying.
और यीशु मसीह ये कह रहा है कि हमें पवित्र आत्मा को निरंतर मांगना है.
Just read once again in John chapter 14.
यूहन्ना 14 में और एक बार हम पढ़ेंगे.
That's why Jesus said in John 14 verse 13.
यूहन्ना 14 उसका 13 वचन.
Whatever you ask in my name, that I will do.
जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा.
सो दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन.
कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो.
सो हाउ द फादर इज ग्लोरिफाइड इन द सन.
और कैसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होती है.
व्हेन आई आस्क गॉड फॉर द होली स्पिरिट आई एम फिल्ड विद होली स्पिरिट.
और जब मैं परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा से भरने के लिए पवित्र आत्मा को मांगता हूँ.
एंड आई कैन लव हिम.
और तब मैं उससे प्रेम कर पाता हूँ.
एंड आई कैन कीप हिज कमांडमेंट्स,
उसकी आज्ञाओं का पालन कर पाता हूँ.
एंड आई कैन अबाइड इन हिज लव,
उसके प्रेम में मैं बना रह सकता हूँ.
मे गॉड हेल्प अस टू सीक फॉर दिस ग्रेट ट्रेजर व्हिच गॉड हैज प्रॉमिस्ड फॉर अस.
और परमेश्वर हमारी सच में सहायता करे कि बड़ा धन ये मिराज जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी उसको हम देख सके.
आई प्रे दैट द आईज ऑफ आवर हार्ट मे बी ओपन.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हृदय की आंखें इसके लिए खुले.
जीसस सेड ब्लेस्ड आर दोज़ हू हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस.
यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं.
लेट अस सी व्हाट आवर प्रेयर्स आर.
और हम अपने प्रार्थनाओं को जांचे कि हमारी प्रार्थनाएं आज क्या है.
हाउ मच आई प्रे फॉर रिसीविंग द होली स्पिरिट.
और कितना अधिक मेरी प्रार्थनाओं के अंदर मैं पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए मांगता हूँ.
हाउ मच आई प्रे लॉर्ड आई वांट द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इन दिस सिचुएशन.
और कितना अधिक हम प्रार्थना करते परिस्थिति में कि प्रभु इस परिस्थिति में मुझे यीशु मसीह का जीवन चाहिए.
जीसस सेड ऑल वर थर्स्टी लेट हिम कम टू मी एंड ड्रिंक.
यीशु मसीह ने कहा जितने प्यासे मेरे पास आकर पिए.
लेट अस आस्क गॉड टू गिव अस दैट थर्स्ट एंड दैट हंगर फॉर हिम.
आइए हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें वो भूख और प्यास दे उसके पास आकर.
It's good to see you all.
आप सबों को देखकर अच्छा लग रहा है.
I stood here to see you all first. Because last time, I don't remember, maybe a year or two years back I came here.
और मुझे याद नहीं कब मैं आया था, या एक या दो साल पहले यहाँ.
I am a brother of, younger brother of brother Abu.
और मैं भाई अबू का छोटा भाई हूँ.
And he was a very tough man. Now he is a very kind to you all, I know.
वो बहुत ही सख्त इंसान थे, लेकिन अभी वो बहुत ही दयामय दिख रही है.
He was very tough as a brother.
और भाई के रूप में बहुत ही सख्त वो थे.
So, but his change.
लेकिन वो बदले.
That made me to look for Jesus.
और उनके बदलाव के कारण मुझे ये हुआ कि मैं उनको, उनके बदलाव को देखकर मैं यीशु की ओर देखूं.
So short-tempered.
वो बहुत ही जल्दी गुस्सा होते थे.
When you go for food and wash your hand.
और जब आप खाना खाकर अपने हाथ को धोने जाते हो.
And you know those days there are no towel and all that, so he just do like this.
और अगर वहाँ पे टॉवल नहीं होता तो हाथ धो के ऐसे आप झटक देते हो.
By chance if one drop falls on him.
और अगर एक उसका छींटा उनके ऊपर गिर जाए.
His real nature will come out.
तो वो पूरी तरह से उनका उनका ऐसा स्वभाव दिखता था.
So he changed then.
और वो पूरी तरह से वहाँ बदल गए हैं.
So that changed me.
और उस बदलाव ने मेरे जीवन को बदला.
When I observed in there was a change.
और जब मैंने उनको देखा कि उसमें बदलाव आया है.
And I thought that this is the truth.
और तब मैंने देखा कि ये सत्य है.
Christ can change the person.
और यीशु मसीह किसी के जीवन को बदल सकता है.
So that is the change God wants to each one of us.
और वही बदलाव परमेश्वर हमारे सबों के जीवन में देखना चाहता है.
I was thinking that you know when you meet a drunkard.
और जब एक शराबी को आप मिलते हैं जब.
What perception you get?
तब आप क्या, आपको क्या मिलेगा उससे.
He's communicating something.
वो आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है.
If you meet a drug addict.
अब एक ड्रग एडिक्ट जो है यार.
He is also communicating something.
और वो भी कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है.
So this at the same time, the same way, we are also communicating something to whoever we encounter, we meet.
और उसी प्रकार से जिस किसी को हम मिलते हैं, जिस किसी का हमारे हमारा सामना होते हैं, उसके साथ हम कुछ न कुछ वार्तालाप कर रहे हैं.
It says in somewhere that the aroma of Jesus.
और कहीं पे लिखा होगा कि यीशु मसीह का सुगंध.
You know that was. I am not very good at picking up words.
और आप जानते हो उस वचन को.
And so the aroma of Jesus.
और आप यीशु मसीह का जो सुगंध है.
So there is an aroma of death.
और मृत्यु की भी एक सुगंध है.
You will see those people around, you will get that aroma of death.
आप देख सकते हैं ऐसे लोगों को आसपास जब होंगे तो उस बात को आप महसूस कर सकते हैं.
But when as a believer, when we meet others.
लेकिन एक विश्वासी होने के नाते जब हम और किसी को मिलते हैं.
It's like an aroma of Jesus Christ.
तब वो यीशु मसीह के एक सुगंध के समान है.
I put something here and you are nearby, you get that smell. You know?
और जब हम परफ्यूम यहाँ वहाँ लगाते किसी के पास जाते तो सुगंध को हम देख पाते सुन सकते हैं.
We are very cautious about hiding our dirty, filthy smell. You know?
और कई बार बहुत ही हम चिंता हम बहुत ही ध्यान रखते हैं कि हमारी दुर्गंध किसी को ना आ जाए, इसलिए हम अपने आप को बहुत ही साफ रखते हैं.
The same way, have we wanted to spread this aroma of Jesus around?
और उसी प्रकार से क्या यीशु मसीह का सुगंध हम हमारे आसपास फैलाने के लिए चिंता करते हैं?
That is what the Holy Spirit can give.
और वो पवित्र आत्मा हमें दे सकता है.
You know, the very presence,
और ये परमेश्वर की उपस्थिति,
which bringeth conviction about sin and walking in righteousness to others,
और पर जो हमारे पाप का बोध लेकर आ सकता है, हमें धार्मिकता में चलने के लिए प्रेरित कर सकता
है. You remember Jesus when he met Zacchaeus.
और यीशु मसीह जब जक्कई को मिला,
Jesus didn't say anything.
यीशु मसीह ने वहां कुछ नहीं कहा.
The very presence of Jesus made him, oh, that I'm selling for whatever I taken and four times I'm giving back and all that has come up.
और यीशु मसीह ने वहाँ पर उसको कोई कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसकी उपस्थिति के द्वारा ही जक्कई पूरी तरह से बदल गया कि मैं ये करूँगा, मैं पश्चाताप करता, मैं चार गुना किसी को लौटा दूंगा, इस प्रकार वो बोलता है.
See, this is the life God wants to give in this present day. You know, you can't have a big public meeting nowadays in the present situation.
आज के दिन में परमेश्वर हम सबों को यही जीवन देना चाहता है. आज के में हम बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन नहीं कर सकते,
बट द वेरी प्रेजेंस,
लेकिन उसकी उपस्थिति,
दैट विल बी इनफ टू टर्न चेंज एंड कन्विक्ट द अदर्स.
और उसकी उपस्थिति ही काफी औरों को बदलने के लिए, उनको वहां पर लौटाने के लिए.
दे विल आस्क, व्हाई यू आर वेरी हैप्पी, व्हाई,
और वो पूछेंगे कि आप इतने खुश क्यों हो.
ओह, देन यू हैव टू से व्हाट व्हाई द रीजन इज.
फिर आपको वो कारण बताना बहुत जरूरी है. फिर
so the our life can change like that by the Holy Spirit.
और हमारा जीवन उसी प्रकार बदल सकता है पवित्र आत्मा के द्वारा.
You know, the all Holy Spirit is a helper.
आप जानते हैं पवित्र आत्मा सहायक है.
You know how many things are there for us to live a good righteous life.
और कितनी ज़्यादा कितनी चीजों की ज़रूरत है.
God the Father is there with us.
वो परमेश्वर पिता हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे साथ में है,
एंड होली स्पिरिट इज देयर,
पवित्र आत्मा हमारे साथ है,
वर्ड ऑफ गॉड इज देयर,
प्रभु का वचन है.
व्हाट मोर वी नीड.
और उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए एक धार्मिक जीवन जीने के लिए.
सो ऑल दीस थिंग्स आर देयर टू सपोर्ट अस.
ये सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध है, हमें सहायता करने के लिए.
इन दैट जॉन 14,
यूहन्ना 14 में हम पढ़ते हैं,
इट सेज दैट वर्स 16,
16 वचन,
verse 16 says that, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever.
और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे.
Abide with you forever.
कि वो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा बना रहे.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive.
यहाँ तक कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता.
Because it setteth him not.
क्योंकि
सीथ हिम नॉट.
क्योंकि वो उसे न तो देखता है,
neither knoweth him,
और न उसे जानता है.
But you know him,
तुम उसे जानते हो.
And he dwelleth with you,
और वो तुम्हारे साथ रहता है.
And shall be with you,
और वह तुम में होगा.
So this is a great promise that you know this is not something for the world.
और ये कोई संसार के लिए नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा वायदा है.
This Holy Spirit is only for a believer.
और पवित्र आत्मा केवल विश्वासियों के लिए दिया गया है.
And it dwelleth with you and he shall be with you in you.
और वो लिखा है कि तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा.
And he shall be in you.
और वो तुम्हारे अंदर होगा.
And this Holy Spirit will you know take us like he is like a guide.
और ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर होके एक गाइड के समान होगा.
नॉट लाइक ए मैप,
एक मैप या नक्शे के जैसा नहीं.
नाउ नाउएडेज यू ऑल आर यूजिंग दिस गूगल मैप.
अब आज हम बहुत कल गूगल मैप यूज करते हैं.
सो यू नो एनीवे यू वांटेड टू गो यू पुट द गूगल मैप एंड वॉक.
और जहां कहीं भी जाना है गूगल मैप में वो आपको लेकर जाएगा.
बट यू नो द प्रॉब्लम ऑफ गूगल मैप.
लेकिन उस गूगल मैप की समस्या क्या आप जानते हैं.
सो देयर आर एरियाज इन सिटीज थग्स आर लिविंग.
और
there are areas in our city the thugs like thieves and robbers.
और ऐसी भी जगह जहाँ पे बहुत सारे ऐसे चोर लुटारू रहते हैं.
Google map will not tell you where the thugs are living.
और Google map ये आपको नहीं बताएगा चोर लुटारू कहाँ पर मिलते हैं.
Google map will show you like that.
और Google map आपको वही रास्ते से लेकर जाएगा.
But the Holy Spirit,
लेकिन पवित्र आत्मा,
that is a difference. The Holy Spirit is a guide.
लेकिन पवित्र आत्मा हमारा गाइड है, सहायक.
If I look the Google map, I will go and then I will be going in a path where the road is there, where the thugs and all will attack me and even kill me.
और Google map हमें ऐसे रास्ते से तो जरूर लेकर जाएगा, बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन वहाँ पे चोर लुटारू होंगे, मुझे लूट लेंगे, मारेंगे.
But if Holy Spirit is a guide, He will guide you like.
लेकिन अगर पवित्र आत्मा है तो इस तरह तुम्हारी अगुवाई करेगी.
एक गाइड पे भरोसा करो,
गाइड के ऊपर भरोसा करो.
सो दैट इज द होली स्पिरिट, ही विल गाइड, ही विल गाइड यू.
और वही पवित्र आत्मा है कि जो हमें हमारा हमारी अगुवाई करेगा.
इज अ गाइड, गाइड, गाइड.
वो हमारा गाइड है, हमें अगुवाई या मार्गदर्शन करने वाला है.
दैट जेंटल वॉइस विल गाइड यू ऑलवेज.
वो कोमल हृदय हमेशा, वो आवाज जो हमेशा हमको निर्देश करके आगे अगुवाई करेगी.
इन रोमन्स 5 इट सेज,
रोमियो 5,
Romans 5 verse 5.
Romeo 5 uska 5 vachan.
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in your hearts by the Holy Spirit.
Aur aasha se lajja nahi hoti kyunki pavitra atma jo hame diya gaya hai uske dwara parmeshwar ka prem hamare man mein dala gaya hai.
Which is given to us.
Jo hame diya gaya hai.
And So the what is this Holy Spirit?
और ये पवित्र आत्मा क्या है?
The love of God,
पिता का, परमेश्वर का जो प्रेम है,
shed abroad,
हमारे
old English है,
वो हमारे हृदय में डाला गया है.
In your hearts,
हमारे हृदयों में डाला गया है.
By the Holy Spirit,
पवित्र आत्मा के द्वारा.
So this love of God is poured out in our hearts by the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा के द्वारा ये परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे हृदय में उंडेला गया है.
I'm bathed in the love of God.
मैं पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ या उसके अंदर पूरी तरह से आ गया हूँ उस पवित्र प्रभु के प्रेम में.
In the love of God.
पूरी तरह से उसमें नहा जैसे मैंने लिया है.
So my heart and mind and everything is filled with this love of God.
मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा सब कुछ जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है.
So I am at love with Him.
और मैं उससे पूरी तरह से प्रेम करता हूँ.
So if I am loving my wife.
और अगर मैं अपनी पत्नी से, मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ.
She is abroad now. She is gone back.
और वो अब्रॉड में है.
I don't know. You know my wife. Her name is Sanita. She is a beautiful lady.
बहुत ही सुंदर वो है.
And suppose she is far away, thousands of miles away.
और बहुत ही हजारों मील दूर वो है.
And now here I am flirting with all the other girls.
और यहाँ पर मैं और भी स्त्रियों के साथ घूम रहा हूँ.
That means I am not loving him, her, no.
तो उसका मतलब मैं उसके साथ नहीं बना रहा हूँ.
That is the love of God. Has been poured out in our heart, so we will not flirt with sin and this thing and that thing. Our focus is on that love of God. The love of God is in our heart.
और परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में इस प्रकार उंडेला गया है ताकि हम पाप के साथ या किसी और चीज, दूसरी संसार की चीजों के साथ, हम उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे.
In Ephesians,
Ephesians 4 अध्याय
4:13
वचन.
And grieve not the Holy Spirit.
30
Ephesians 5:30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption.
और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है.
Grieve not the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा को शोकित मत करो.
ग्रीव नॉट दिस लव ऑफ गॉड.
और परमेश्वर का ये जो प्रेम है उसे आप शोकित मत करें.
सो माई लाइफ इज टू प्लीज दिस लव ऑफ गॉड.
और मेरा जो जीवन है, जो परमेश्वर का ये जो प्रेम है उसे प्रसन्न करना है.
आई विल नॉट डू एनीथिंग विच इज ग्रीविंग दिस लव ऑफ गॉड.
और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि ये परमेश्वर का जो प्रेम है उसे मैं शोकित करूं या खेदित करूं.
सी दैट इज हाउ वी कैन हैव एन ओवरकमिंग लाइफ.
और इसी प्रकार हम एक जयवंत जीवन जी सकते
हैं. बाय द स्पिरिट पुट टू डेथ द डीड्स ऑफ द बॉडी.
और आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को नाश करते हुए.
In other words, if I put it another way,
दूसरे शब्दों में
अगर कहूं, by the love of God, put to death the deeds of the body.
और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा शरीर के सारे कामों को मारते हुए उसको नाश करते हुए.
Is shed abroad in our hearts.
और ये परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के सारे क्षेत्रों के ऊपर वो उंडेला गया है.
So I don't want to grieve this love of God.
और मैं ये जो प्रेम मुझ पर जो उंडेला गया उसको मैं शोकित नहीं करना चाहता.
So I will not do anything. It's all a relationship again. I will not do anything which is displeasing or hurting or grieving this love of God.
और ये एक संबंध के बारे में ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगा जिससे कि मैं पवित्र आत्मा को खेद करूँ या उसे मैं शोकित करूँ.
Just above that says, in verse 29 says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer.
और 29 में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम होता कि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो.
If I have Holy Spirit, this is how my communication is.
और यदि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मेरा जो वार्तालाप जो है इस प्रकार हो जाएगा.
I will not have a word in my mouth which is grieving my wife or my children or my brethren.
और तब अगर पवित्र आत्मा मुझ में तो मेरे मुख में ऐसा एक भी शब्द नहीं होगा जो मेरे पत्नी बच्चों को खेदित करने वाला चोट पहुंचाने वाला होगा.
When I am get angry, put the word sharp arrows like that. Tuck, tuck.
और जब बहुत ही क्रोध आ जाता है तो लगता है कि हमारे शब्दों को उस तलवार उस चाकू के जैसे उसको मार दे ऐसे ऐसे करके.
If you are a husband and wife, you know what exactly to say.
और अगर पति पत्नी है तो अगर पति पत्नी तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसको चोट पहुंचाने के लिए तुमको कौन से शब्द इस्तेमाल करने.
राइट वर्ड इज देयर टू इम्पार्ट curse and this that.
और एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उसको पूरी तरह से चोट करने के लिए उसको पूरी तरह से.
If Holy Spirit is there, what? It impart grace. If I talk something, it is imparting grace to my wife.
यदि पवित्र आत्मा मुझ में है अगर मैं कुछ भी बोलूंगा मेरे हर शब्दों से मेरी पत्नी के लिए अनुग्रही होगा.
It is not that they are perfect, no.
और इसका मतलब ये नहीं कि वो सिद्ध है.
But impart grace so that they will be lifted up. They will walk in grace.
और ताकि अनुग्रह को मैं उनके ऊपर उनको देता रहूं ताकि और भी वो ऊपर उठते रहे.
So this is I'm just giving a little bit on Holy Spirit. My time is more now.
पवित्र आत्मा के बारे में है.
One more thing I wanted to say.
और एक बात मैं कहना चाहता हूँ.
About the forgiveness which we heard.
और जिस माफी के बारे में हमने सुना.
The we heard the children said that is for the husband I'm saying.
और ये पति के लिए मैं कहना चाहता हूँ.
If I'm forgiven my wife.
यदि मैंने मेरी पत्नी को माफ किया है.
Before that, if God has forgiven our sins, it says that He will never remember that sins anymore.
और इसके पहले वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करता है उसके बाद वो कभी भी उस पापों को स्मरण नहीं करता.
It says that it is put under the deepest part of the sea.
और वो कहता है कि समुद्र की गहराई के अंदर उनको डाल दिया गया है.
You know the Titanic and all is deep under the sea, they cannot lift it up.
और टाइटैनिक जो है पूरी गहराई के अंदर डूब गए वो जहाज अब उसको उठा नहीं सकते हैं.
Just imagine that the same way our sins are deep under the sea.
और उसी प्रकार मान के देखिए परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ करे उसी प्रकार गहराई में डाल दिए हैं.
Even if you want to bring all the you cannot.
और जहां तक कि आप उसको लाना भी चाहे तो नहीं ला सकते.
This is how the forgiveness is. You know when you are forgiven, you will not bring it up again and again.
और इसी प्रकार माफी देना है अगर आपने किसी को माफी दिया तो बार बार उसको खोद कर आप वापस उठाकर नहीं लाएंगे.
Next time you have an argument, you will not bring that particular sin of your wife.
और अगली बार अगर पत्नी के साथ कोई विवाद होता है तो आप उस पापों को खोद कर वापस वहां नहीं निकाल कर खड़ा करेंगे.
Not at all. You are forgiven.
बिल्कुल भी नहीं. आप उसको माफ कर दिया है.